الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آپ اپنے ڈاکٹر دندان کو لے کے آئے تو دانت پر انگلی رکھ لی آپ نے. میرے مرشد، میرے شیخ، ریکارڈ کر لینا، شکل والی ویڈیو تو نہیں نا. میرے مرشد، میرے شیخ، شیخ الآراء والعجم، عارف باللہ، حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب، نور اللہ مرقدہ، حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک بادشاہ گزرے. اور فرمایا کہ دیکھو، اگر صرف وہ بادشاہ ہوتے تو تاریخ میں زیادہ سے زیادہ یہ تذکرہ ملتا کہ اس مدت میں بلخ کا ایک بادشاہ گزرا ہے. تاریخ کا مطالعہ کرنے والا طالب علم شاید اس کو پڑھ بھی لیتا، اس بادشاہ کا ذکر اس کی نظر سے گزر بھی جاتا، لیکن وہ بھی بھول جاتا. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ہمارے ملک کو بنے ہوئے، پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 67 برس کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، عافیت عطا فرمائے، یہاں کی زراعت، تجارت، معیشت میں برکت فرمائے، تمام شور فتن سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس ملک کو بنے ہوئے تقریباً 67 برس کے قریب ہیں، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہاں کتنے صدور یعنی کتنے صدر گزرے ہیں یا کتنے وزیر اعظم گزرے ہیں تو نہیں بتا سکتا. بلکہ آج کے جو اس وقت جو ہمارے نوجوان طالب علم ہیں، اگر اس کے سامنے بعض صدر کے نام، وزیر اعظم کے نام لیے جائیں تو بتا بھی نہ سکے گا، کہے گا یہ کون ہے. تو وہ اسی سے سوچ لے کہ جب ابھی 67 برس کوئی اتنی بڑی مدت نہیں، اس مدت کے صدور اور وزراء کے نام کوئی نہیں جانتا. تو سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جو دوسری صدی ہجری کے ایک زمانے کے بادشاہ گزرے ہیں، اگر تذکرہ ہوتا ان بادشاہ کا تو کون پہچانتا. لیکن آج اس شخص کا تذکرہ اس مسجد میں اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس شخص نے سلطنت اللہ تعالی کے نام پر فدا کی، اس لیے اس کا تذکرہ ہے. یعنی جو اللہ پر فدا ہوگا، فرما دیا کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس چلا جائے گا وہ باقی ہو جائے گا. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے سلطنت اللہ پر فدا کی. اور اس اللہ تعالی پر فداکاری کی برکت کہ نہ صرف اس مسجد میں تذکرہ, اہل اللہ علماء کی مجالس میں تذکرہ, بلکہ قرآن پاک کی تفسیر میں ان کا ذکر ہے اور حدیث شریف کی کتب میں, احادیث مبارکہ کی کتب میں ان کا ذکر ہے. یہ اللہ تعالی پر فدا ہونے کی برکت ہے. اور وہ تذکرہ کیا ہے؟ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ, مفتی بغداد, صاحب تفسیر روح المعانی, اور میرے شیخ کو ان سے بڑی محبت تھی تو حضرت اپنی مجالس میں ان کا بار بار تذکرہ فرمانا. انہوں نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے پانچویں پارے میں, چوتھے پارے میں, اور وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معصوم بنا دیجئے. معصوم جس کو عصمت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, معصوم ہونا اور عصمت ہونا یہ چیز ہے کہ گویا گناہ کا صدور بھی ممکن نہ ہو, یعنی گناہ ہو ہی نہ اور اس کا امکان بھی نہ ہو. اور عصمت کا یہ عقیدہ یہ ہمارے عقائد میں سے ہے, لیکن یہ عقیدہ عصمت انبیاء کے نام سے ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں. یہ ہمارے عقائد میں سے ہے, تمام جملہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں, اور انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کسی غیر نبی کو محفوظ فرما دے تو محفوظ ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, حفاظت, لیکن معصوم نہیں ہو سکتا. اور یہی چیز اپنے شیخ, کسی پیر, کسی ولی, کسی عالم ربانی, یہی اس کے ساتھ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے, اور یہ دعا مانگنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ کوئی معصوم ہو نہیں سکتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی معصوم ہو نہیں سکتا تو یہ دعا انہوں نے کیوں مانگی؟ ایک شخص جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے, سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے, فقیہ تھے, محدث تھے, پھر یہ دعا مانگ رہے ہیں. یہ تو سمجھایا کہ غیر نبی معصوم نہیں ہوتا تو اس کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میری مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے. تو ایک غلبہ حال کے طور پر انہوں نے دعا مانگی, حالانکہ جو شخص عالم ہو, امام صاحب کا شاگرد ہو, اسے معلوم ہوگا کہ میں نبی میں معصوم نہیں ہو سکتا, لیکن اس کو کہتے ہیں غلبہ حال. جیسے مارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ اور نافرمانی کے بعد اہل اللہ کا یہ حال ہوتا ہے, اس درجے کا ان کو ملال اور ندامت ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں کاش کے مادر نہ زادے مرمرا, کاش کے میری ماں نے مجھ کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا, یا مرا شیر خردے درچرا, یا اس نالائق حرکت کرنے سے پہلے جنگل سے شیر آتا اور مجھے چیر پھاڑ کر کھا جاتا, لیکن میں اپنے مالک کو ناراض نہ کرتا. اس کو کہتے ہیں غلبہ حال. اور بعض غلبہ حال وہ محمود ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, اور بعض غلبہ ہوتا ہے وہ صاحب حال کے لیے اچھا ہوتا ہے, باقی وہ قابل اتباع نہیں ہوتا. اس لیے بتا دیں کہ تصوف کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ بعضوں پر کوئی چیز کا حال طاری ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے لیے تو ٹھیک ہے, قابل اتباع نہیں ہے. اس کو وہ کہا جاتا ہے. مثلا اس کی ایک مثال یوں ہو سکتی ہے, کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص حالت میں دیکھ لے اور ایسی حالت ہے جو بہرحال خلاف شریعت بھی نہیں ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص رنگ کی پگڑی میں امامے میں دیکھ لیا, اب وہ صرف وہی باندھے اس کے علاوہ ہی نہ باندھے جبکہ جائز بھی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. یا کوئی طریقہ امامہ وہ خاص دیکھے کہ جی آپ نے اس طرح پیش باندھے تو زیادہ سے زیادہ وہ اس کے لیے ایک حال ہو سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے دوسروں کو بھی اس کا پابند کرے. یہ ہمارے اکابر کی طریقہ اعتدال ہے, اس کو کہتے ہیں حد اعتدال اور طریقہ اعتدال. تو حضرت ابراہیم سلطان ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھ کو معصوم بنا دیجئے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دن کعبہ شریف میں دعا مانگ رہے تھے تو آواز آئی کہ سلطان ابراہیم ابن آدم کل الناس یسألوننی العصمۃ, ہر شخص ہر آدمی ہر انسان مجھ سے عصمت مانگتا ہے کہ میں معصوم ہو جاؤں. فرماتے ہیں اگر سب کے سب معصوم ہو گئے تو فمن یتفضل اور ومن یتکرم, اگر سب کے سب معصوم ہو گئے تو میں اپنا فضل کس پر کروں گا, میں اپنا کرم کس پر کروں گا, میں گناہوں کو بخشنا جو عین اللہ تعالی کی رحمت اور محبت کا ایک تجلی ہے ایک صفت ہے تو وہ کسے, سبھی معصوم ہو جائیں گے. تو یہ واقعہ لکھا. دوسرا واقعہ جو حدیث شریف میں آیا, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح, اس میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک شرابی شراب پی کر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور قے شراب کی جاتی سے قے اس کے منہ سے الٹی اور قے وہ نکل آئی. سلطان ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا, نظر پڑی کہ ایک شخص بے ہوش پڑا ہے شرابی, دیکھا آگے بڑھ گئے, کچھ خیال آیا پلٹ کر واپس آئے اور پانی لا کر کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے میرے دوست کا بندہ ہے, پانی لا کر اس کے قے کو صاف کیا, پانی کے لگنے سے اس کو ہوش آیا تو دیکھا ایک شخص سلطان ابراہیم ابن آدم اتنا بڑا شخص تاریخ سلطنت, اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. بس ان کی اس اخلاقی بلندی سے متاثر ہو کر اس نے کہا کہ حضرت ہاتھ بڑھائیے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ واللہ لا اشرب خمرا ابدا, کہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو اس زمانے کے جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ تھے اس سب میں اس کو بھی شامل فرما دیا. سلطان ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بات منکشف ہوئی, بڑے حیران ہوئے کہ وہ مرتبہ وہ درجہ جو بڑی محنتوں کے بعد ریاضتوں کے بعد اور مدت کے بعد मिलता है और इस शख्स को इतनी जल्दी ये मिल गया। फरमाते के खाद ने पूछा ये बात तो आवाज आई के ऐ सुल्तान इब्राहिम इब्न अदम, बात यह है कि अंता गसलता फमहु लिअजली, कि तूने इसका मुंह धोया मेरी खातिर से, फगसलतु कल्बहु लिअजली का, मैंने इसके दिल को धोया तेरी खातिर से। ये सुल्तान इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने क्या इज्जत क्या शरफ क्या मकाम दिया, क्यों सल्तनत अल्लाह के नाम पर फिदा करने की वजह से। बल्कि उस शख्स का तज़किरा गैरों में भी है और गैर मुस्लिमों ने अंग्रेजों ने इन पर शायरी की है। मुझे पंजाब का तो मालूम नहीं लेकिन सिंध की, मैं खुद जब 9वीं क्लास में था या 10वीं में, हमारी अंग्रेजी की किताब में जो पोइट्री है नज़म है वो इनके नाम से, उन्होंने अबू बिन अधम के नाम से। इनके वाक्य को लिखा, जिसमें से एक वाक्य वो है कि सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम रहमतुल्लाह अलैह एक दफा जंगल में तशरीफ फरमा थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे, फरिश्ता गुजरा तो फरमाए कि भाई कहां जा रहे हैं, कि अल्लाह ताला ने मुझको दुनिया में भेजा है कि मेरे मुझसे जो मोहब्बत करने वाले हैं उन सब की फहरिस्त बना के लाओ। तो फरमाया कि मेरा नाम जब सबका नाम फहरिस्त बना लेना तो सबसे आखिर में मेरा नाम लिख लेना। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया है कि सबसे पहले आपका नाम लिख। तो ये क्या है, अल्लाह पर फिदा होने की बरकत है कि अपने तो अपने गैर भी मुअतरिफ है। तकवा चीज ऐसी है, सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तकल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, जो तकवा से रहता है अल्लाह से डरता है, सारा फी बिलाद ही सारे आलम में जहां जाए आमिनन अमन से जाएगा, चैन और सुकून से रहेगा। तो मेरे मुर्शिद और मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सुल्तान इब्राहिम इब्ने अधम रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने सल्तनत बलख अल्लाह के नाम पर फिदा की और उस सल्तनत के जिस वक्त ये शाही लिबास उतार कर और फकीरी का लिबास पहन रहे थे, उस वक्त उस नक्शे को मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने शेर में पेश किया। वो क्या कि जिसमें शाही आज गुदड़ी पोश है, जिसमें शाही आज गुदड़ी पोश है और जाहे शाही फक्र में रूपोश है, यानी शाही जो बादशाह है वो आज शाही लिबास उतारकर गुदड़ी फकीरों का लिबास पहन रहा है और बादशाह फकीरी में अपने आप को छुपा रहा है। जिसमें शाही आज गुदड़ी पोश है और जाहे शाही फक्र में रूपोश है, क्यों फक्र की लज्जत से वाकिफ हो गई, फक्र की लज्जत से वाकिफ हो गई, जाने सुल्तान जाने आरिफ हो गई, अल्लाह ताला के नाम का मजा मिला, अल्लाह ताला के नाम की लज्जत मिली। तो वो बादशाह सल्तनत फिदा करके एक आरिफ बिल्लाह बन रहा है, इसलिए तो तज़किरा है उनका। हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ये सल्तनत फिदा ना करते तो वही बात की तारीख में तज़किरा मिलता कि एक शख्स इस जमाने का बलख का इस वक्त से इस वक्त तक एक बादशाह गुजरा है। लेकिन सल्तनत फिदा करने की बरकत अल्लाह ताला ने वो इज्जत दी। बंदा एक मजमून पेश किया करता है कि आप हजरात ने तारीख में कभी पढ़ा या किसी से सुना कि किसी बादशाह ने किसी बादशाह की जूती उठाई हो, सुना कभी पढ़ा और या किसी शख्स ने यह दावा किया हो, किसी आम आदमी ने, बादशाह नहीं, कि मैंने इतने सुदूर की, इतने वुजरा की, इतने बादशाहों की जूती उठाई है, ऐसा भी है। अलबत्ता हर जमाने में ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने आज जाना और न्याज मंदाना अंदाज से इस बात को पेश किया, बतौर तशक्कुर के, शुक्र के तौर पर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फला फला आलिम रब्बानी, फला फला अल्लाह वाले की जूती उठाई है। ये तो जबान पर लोगों की और किताबों में भी लिखा है, और हमारी इस उम्मत के अंदर इसका आगाज हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। और मेरे मुर्शिद, मेरे शेख हजरत वाला, हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद मजहर साहब दावत बरकातुह, जो मेरे शेख के साहबजादे भी हैं मुर्शिद अव्वल के, और हजरत वाला हजरत मौलाना शाह और साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी हैं, और हजरत वाला हजरत हकीम कलीमुल्लाह साहब, ये हजरत मौलाना शाह और साहब रहमतुल्लाह अलैह के दामाद हैं और हजरत के कायम मकाम है। उन्होंने मक्के शरीफ में मुझसे ये बात फरमाई थी हजरत मौलाना मदहर साहब दाऊद बरकातुम के लिए कि वो अपने वालिद साहब के कायम मकाम है। तो वो अक्सर सुनाते हैं कि देखो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला उनके साथ एक लकब लगाया जाता है साहिबुन नालैन, नालैन मुबारक, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक, उसको उठाते थे कपड़े में लपेट के संभाल के रख लेते थे। तो ये उनकी, आज जो हम अपने उस्ताद की, अपने शेख की जो जूती उठाते हैं, ये वही सुन्नत है। बल्कि मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते थे कि अदब ये है कि जूती जब उठाओ तो उल्टे हाथ में पकड़ो, बाएं हाथ में, लेकिन जब अपने उस्ताद की, अपने शेख की और अपने बाप की जूती उठाओ तो दाएं हाथ में पकड़ो। इसको कहते हैं तरबियत, कि कितना अदब। तो उम्मत में ऐसे लोग गुजरे हैं, बेशुमार गुजरे हैं, कि कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फला ला वाले की, फला बुजुर्ग की जूती उठाई है। बल्कि तारीख में ये बात भी गुजरती है कि फला बादशाह ने फला अल्लाह वाले की जूती उठाई है, बादशाह ने बादशाह की जूती नहीं उठाई, लेकिन बादशाह ने अल्लाह वालों की जूती उठाई है। ये इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह वालों के पास जो दौलत है वो बादशाहों से बढ़कर और बादशाहों की बादशाहत से बढ़कर है, बादशाहों से बढ़कर और बादशाहों की बादशाहत से बढ़कर कोई दौलत है। अगर उससे बढ़कर दौलत न होती तो कोई बादशाह किसी अल्लाह वाले की जूती क्यों उठाता। और ये तो ऐसी चीज है कि मुसलमान बादशाह तो क्या, अंग्रेजों ने भी अल्लाह वालों की जूती उठाई है। हजरत शाह फजल रहमान, मौलाना शाह फजल रहमान साहब गली मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़ों में से हैं, हजरत की उम्र 100 बरस से भी ज्यादा गुजरी है, बुखारी शरीफ का दर्श देते थे, हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, अंग्रेज उनकी वायसराय उनकी खिदमत में आता था, उनकी खिदमत में आया, आजिजाना और न्याज मंदाना दुआएं लेने के लिए, اور عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے. فرمایا ظلم مت کرنا, ظلم سے حکومت چلی جاتی ہے, ظلم مت کرنا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, بڑوں کی نیت کا چھوٹوں پر بڑا اثر پڑتا ہے, بادشاہ کی نیت کا عوام پر, باپ کی نیت کا اولاد پر, شیخ کی نیت کا مریدوں پر, استاد کی نیت کا شاگردوں پر بڑا اثر ہوتا ہے. اس پر میرے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد مدر صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ واقعہ سنایا کرتے ہیں, حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے بھی سنا کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے گیا تھا, بچھڑ گیا. چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچا, وہاں انار تھا, پیاس لگی ہوئی تھی. باغ کا جو میں جو تھا مالک وہ بوڑھا تھا, اس نے کہا بادشاہ نے کہ بھائی اس کو معلوم نہیں ہے بادشاہ, اس نے کہا بھائی مجھے پیاس لگی ہے, بھوک لگی ہے. میں کوئی بات نہیں, تشریف رکھے, بٹھایا عزت سے اور ایک انار توڑا, اور انار توڑ کر ان کو نچوڑا, اور نچوڑ کر اس کا رس پلایا اسے. اب وہ رس بہت عمدہ میٹھا لبالب بھرا ہوا گلاس سے بادشاہ نے پیا. سوچا یار یہ بڑے مزے ہیں ان کے, یہ تو اتنا زبردست باغ ہے اس میں اتنا رس نکلتا ہے, اس پر کچھ ٹیکس لگانا پڑے گا. بادشاہ نے کہا اچھا بھائی مجھے ابھی پیاس بجھی نہیں ہے, تھوڑا سا اور پلا دو. اس نے وہیں سے ویسا ہی انار توڑا, اس کو نچوڑا, تو آدھا گلاس بھی مشکل سے پورا ہوا, آدھا گلاس مشکل سے پورا ہوا. بادشاہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے, یہیں سے بھی تم نے انار توڑا تھا تو گلاس پورا بھر گیا تھا, اور اب وہیں سے تم نے انار توڑا تو آدھا گلاس مشکل سے پورا ہوا. تو بوڑھے نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے, اس کی نیت میں کچھ فساد آ گیا ہے. جب بادشاہ نے سنا تو اس نے توبہ کی, اس نے کہا اچھا میری نیت کا اتنا اثر, کہ نہیں بھائی میں ان غریبوں سے کیا ٹیکس لوں, ٹھیک ہے ان کو کمانے دو کھانے دو, بلکہ مجھے ان کو اور نوازنا چاہیے, مراعات دینی چاہیے. اب جب اس نے کہا اچھا ایک گلاس اور پلا دو, تو بوڑھے نے کیا کیا, وہی ایک چھوٹا انار تھا اسی جگہ سے توڑا, اس کو نچوڑا, اتنا رس نکلا کہ گلاس سے بھی چھڑکنے لگا. بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا, وہی تم نے اب اسے چھوٹا انار توڑا اس میں اتنا رس؟ تو اس نے کہا لگتا ہے ہمارے بادشاہ نے توبہ کر لی ہے. اتنا فرق, اور اس کو معلوم نہیں یہ بادشاہ ہے. تب بادشاہ نے بتایا کہ دیکھو میں خود بادشاہ ہوں اور یہ بات تھی. تو بوڑھے نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اپنی نیت کا نتیجہ اور اثر تو آپ نے فوری عمل, آپ رد عمل خود دیکھ لیا آپ نے. تو اللہ والوں کی جوتیاں بادشاہوں نے بھی اٹھائی ہیں, لیکن کسی بادشاہ کی جوتی کسی بادشاہ نے کبھی نہیں اٹھائی. یہاں تک کہ مفتوح بادشاہ نے بھی فاتح بادشاہ کی جوتی نہیں اٹھائی. تو سوچنے کی بات ہے, یہ اللہ والے تو کیا چیز ہوں گے, ان کی جوتیاں ایسی ہیں, ان کی جوتیاں ایسی ہیں تو یہ کیا چیز ہوں گے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر یہ مضمون سنایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ جس سال فارغ ہوئے, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء اکرام آپ نے بخاری شریف پڑھ لی ہے, اب بخاری شریف کی روح چاہتے ہو, تعلق اللہ اگر چاہتے ہو, کسی اللہ والے کی جوتی اٹھاؤ, کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو. اور پھر جوش میں آ کر فرمایا کہ اللہ والوں کی جوتیوں سے جو خاک کے ذرے لگے ہیں وہ بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں. اسی کو حضرت نے شعر میں فرمایا کہ اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں جو خاک کے ذرے, اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں جو خاک کے ذرے, شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے. शरफ हासिल है उनको मोतियों पर ताज शाहों के। तो उनकी जूती, जिनकी जूती ऐसी है वो क्या हो गए सुहाग। अब वो बात सुने हजरत की, एक फलसफा और ज्यादा मुश्किल नहीं है। फरमाया देखो, एक होता है तारिके सल्तनत, एक होता है मतरूके सल्तनत। तारिके सल्तनत उसको कहते हैं जो सल्तनत को छोड़ दे, मतरूके सल्तनत उसको कहते हैं जिसको सल्तनत छोड़ दे। सही ना जी? एक है तारिके सल्तनत जो सल्तनत को छोड़ दे, तर्क कर दे, और मतरूके सल्तनत वो है जिसको सल्तनत छोड़ दे। इज्जत तारीख सल्तनत की होती है या मतरूके सल्तनत की? तारीख सल्तनत की। जो सल्तनत को छोड़ दे इज्जत उसकी उसको मिलती है, और मतरूके सल्तनत जिसको सल्तनत छोड़ दे उसको इज्जत नहीं मिलती। सही है जी? तो ये फलसफा समझ में आ गया, ये उसूल तारीख सल्तनत और मतरूके सल्तनत। अब मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी बात पर आइए। फरमाया एक होता है तारिके मासियत, मासियत माने गुनाह, और एक है मतरूके मासियत। तारिके मासियत वो है जो गुनाह को छोड़ दे। ताकते गुनाह है, गुनाह करने को दिल चाह रहा है, गुनाह के तकादे मौजूद हैं, गुनाह के असबाब हैं, गुनाह का मौका है, लेकिन अल्लाह की खातिर से, अल्लाह ताला की अजमत की खातिर से वो गुनाह ना करे। इसको कहते हैं तारिके मासियत। और हदीस शरीफ में आया, बुखारी शरीफ की हदीस है, वो सात किस्म के लोगों को जो अर्श का साया मिलेगा, उसमें से एक वो भी है, रजुलुन तलबतु जातु मनसिबिन व सिफातिन, कि ऐसा शख्स कि जिसको कोई औरत बुलाए, खानदान की है, खूबसूरत है, यानी भंगन चमार चुड़ैल नहीं है, खानदानी और खूबसूरत है, वो उसको बुलाती है, गुनाह की दावत दे रही है। फकाल इन्नी अखाफुल्लाह, लेकिन वो शख्स कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं, नजर बचाकर। वो फिर रिवायत है, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह से डरता हूं जो रब्बुल आलमीन है, और वो गुनाह नहीं करता, नजर बचाता है। अब बताइए, हुआ ना तारीख मासियत, यानी इसको गुनाह का मौका है कि खुद पेशकश हो रही है, ऑफर हो रही है, पेशकश है, मौका है, लेकिन अजमत इलाहिया का गलबा इसको उस गुनाह के न करने पर मजबूर कर रहा है, उसको तकवा का तकवा पर अमल कर रहा है। इस शख्स को कयामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। ये तारीख मासियत है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी के अंदर इसकी शरह में एक बात और लिखी है, फरमाते हैं ऐसे ही कोई औरत अगर उसको कोई मर्द बुलाए, माल की पेशकश करे कि तुझे माल दूंगा लेकिन तू इस गुनाह पर राजी हो जा, बेहयाई बेशर्मी के काम, लेकिन वो मना कर दे, अगर तुझे धमकी भी देता है वो मना कर दे, नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं, अगर जो मैं जरूरतमंद हूं, मैं गरीब हूं, मुझे चाहिए, लेकिन वो अल्लाह के लिए, बस मना कर दे, ऐसी औरत को भी कयामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। अल्लामा बदरुद्दीन आयनी रहमतुल्लाह अलैह की उमदतुल कारी है शरा सहीहुल बुखारी, उन्होंने एक शरा और लिखी, फरमाते हैं ऐसे ही वो एक कोई लड़का है, खूबसूरत है, अमरद है, अमृत कौन होता है? अमृत वो होता है जो मिसल अमरूद के होता है। अमरूद पर बाल नहीं होते ना, इसके भी बाल नहीं। अमृत यानी जिसकी दाढ़ी मूछ अभी ना निकली हुई, लम तर्रा शारे बहु लम तम्बुक लहयता हूं, तर्रा शारे बहु मुझे मसे भीग गई हो लेकिन अभी दाढ़ी ना निकली, वो अमृत है। अब वो अमृत लड़के को कोई पेशकश करे कि तुझे सोहन हलवा खिलाऊंगा, मोबाइल दिलाऊंगा, तेरे मोबाइल में बैलेंस डालूंगा, या किसी और मुलाजमत दिला दूंगा, कपड़े दिला दूंगा, पेशकश कर रहा है, लेकिन इस गुनाह पर तू राजी हो जा, अल्लाह ताला की नाफरमानी इसके इस काम पर तू राजी हो जा। और वो यही कहता, नहीं मैं अल्लाह से करता हूं कि ये बेशर्मी का काम मैं नहीं करूंगा। अगर जो उसको डराता है, धमकाता है, लेकिन वो अल्लाह के लिए बनता है, इसको भी कयामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। ये कौन है? ये तारीख मासीयत है, ताकत गुनाह है, गुनाह का मापा भी है। हजरत वाला रहमतुल्लाह ने इसको अपने अल्फाज में ऐसे भी समझाया, फरमाते हैं कि इश्क पर शबाब हो, हुस्न पर शबाब हो, उस वक्त में खालिक शबाब की खातिर से गुनाह से बचे।
खालिक शबाब
कि खुद भी ताकत गुनाह है, ताकत गुनाह है और खुद हसीन भी है, लेकिन उस वक्त खालिक हुस्न, मेरे शेख ने हजरत अल्लाह ताला का एक नाम और रखा था, खालिक नमकियात लैलाए कायनात, खालिक नमकियात लैलाए कायनात, जो सारे आलम की लैलाओं को नमक देने वाला है, लैला को से सरफे नजर करके खालिक नमकियात लैलाए कायनात को पाने की फिक्र करने वाला, ये भी तारीख मासियत है। तारीख मासियत का फलसफा समझ में आएंगे ना। दूसरा है मतरूक मासियत, यानी अब गुनाह का मौका नहीं रहा, गुनाह की ताकत नहीं रही। शायर कहता है कि पास जो कुछ था, पास जो कुछ था वो सरफे मैं हुआ, मैं माने शराब, पास जो कुछ था वो सरफे मैं हुआ, अब क्यों ना मस्जिद संभाली जाएगी। यानी मतलब क्या है कि ताकत था, वक्त था, जवानी थी, बस इस बात की फिक्र के माल कमाओ, दीन सीखो ना सीखो, जमात की नमाज का वक्त है, जमात से नमाज पढ़ो ना पढ़ो, दीन सीखो ना सीखो, बस माल कमाओ। और जब माल कमाने के काबिल ना रहे, अब ताकतें जवाब दे गई, नजर कुछ नहीं आता, बच्चे जवान हो गए, अब कहते अब्बा, अच्छा फिर अजीब बात यह है कि वो बाप जो सारी जिंदगी कमाया, खिलाया, मकान बनाया, कारोबार सेट किया, जब उसका बेटा कारोबार में आता है, कहता है अब्बा आपको कारोबार चलाना नहीं आता। ये भी एक अजीब बात है। फिर बेटा क्या कहता है कि अब्बा आपको कारोबार चलाना नहीं आता, ऐसे करें ऐसे। फिर वो बाप को डांटता है कि अब्बा आपको क्या पता, ये ऐसे करते सही तरीके से करें, आप हमारे मामलात में दखल मत दिया करें अब्बा, बस आप अपने काम, बस आपको रोटी मिलती रहेगी, आप अपने काम से काम रखें। वो बाप जिसने बरसा बरस तजर्बेकार मकान बनाया, सब कुछ बना, सब कुछ है, कारोबार बड़ा, जिसने खून पसीने से मेहनत करके बनाया, बाप उसको, बेटा उसको बड़े मजे से कहता है अब्बा बस घर पे बैठो, आपको कुछ नहीं आता। और उस बेटे को अपने जुमले का एहसास उस दिन होता है कि जिस दिन उसका बेटा उसको कहता है अब्बा आप तो बिल्कुल बेवकूफ हो।
सही है,
तब वो माजी उसको याद आता है कि ओहो मैंने अपने बाप को क्या कहा था, आज मेरा बेटा मुझे कह रहा है। वो जवान है ना, वो समझता है बाप बेवकूफ है। और अफसोस तो इस पर है, अच्छे अच्छे दीनदार भी अपने मां बाप की परवाह नहीं करते। चाहे वो बीवी की वजह से हो, कारोबार की वजह से हो, या अपना अखलाकी तनजुली की वजह से हो। और इसमें यह गुना किरदार बाप का भी है, क्योंकि बाप ने कभी तरबियत के खातिर से इसको अल्लाह वालों के पास उलमा के पास लेकर नहीं गया। अकबर इलाहाबादी जज शायर फरमाते हैं कि नहीं सीखा दीन उन्होंने जाकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। मैं एक बात पूछता हूं, एक बच्चे ने हिफ्ज़े कुरान किया, बड़ी नेमत की चीज है। उस हिफ्ज़े कुरान पर बाप की तरफ से मोबाइल का तोहफा कोई मैच करता है, कोई मुनासबत है, कोई मुनासबत आती है नजर इसकी? एक बच्चे ने क्या हिफ्ज़े कुरान और उसको बाप तोहफा दे रहा है मोबाइल का, कोई मुनासबत नजर आती है जनाब? और फिर जमाना भी 3G है इसमें। हमारे कराची में एक बस चलती है, उसका नाम है G3। सफर क्या होगा ना उसमें, बल्कि उसके बाद G3 के बाद G11 भी आई, G18 क्या, G25 तक है। तो जब ये 3G आया, मैंने कहा हाय बेचारे ने जी में तरक्की में 3G बनाने में इतनी जमाना लगाया, हमारे यहां पहले से G25 चल रही है। और कहते हैं इससे तरक्की होगी। जरा आप पूरे मुल्तान का तो मुझे मालूम नहीं, मैं अभी आज ही पहुंचा हूं, लेकिन मैंने पूरे कराची में जितने बोर्ड देखे 3G से मुतालिक, उसकी पब्लिसिटी से मुतालिक, सब में लिखा था मूवी देखें, अपनी पसंदीदा चीजें डाउनलोड करें। तो ये तरक्की की चीजें हैं, फिल्में देखने से तरक्की होगी? या कौम, सारी कौम सब काम छोड़ के क्रिकेट मैच देखेगी? या अल्लाह पाकिस्तान जीत जाए, या अल्लाह, या अल्लाह पाकिस्तान जीत जाए। और मजे की बात यह कि इमाम साहब भी सलाम फेर के कहते हैं कि मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं भी आ क्रिकेट देखने। वो भी मुक्तदी भी माशाल्लाह इतनी मोहब्बत और अकीदत है उसको अपने इमाम साहब से, बीवी से घर में जाकर कह रहा है कि आज हमारे घर में बरकत आने वाली है, इमाम साहब तशरीफ लाने वाले हैं, यूं करो कबाब तल लो। तो जिसको तो उम्मत को यह समझाना था, जिस दीनदार को यह अमली सबक देना था कि भाई ये वक्त का ज़िया है। जैसे एक सियासतदान किसी जगह पर गया, उसको मदऊ किया गया फुटबॉल मैच के लिए, उसके बाद उसकी तकरीर भी थी, मैच के बाद उसने तकरीर की कि उसने कहा भाइयों मैंने आपका ये मैच देखा, मुझे मसर्रत भी हुई, खुशी भी हुई, गम भी हुआ। मैं आपसे बात कहता हूं कि आप मुझको वोट दीजिए, अगर मुझे वोट दिया मैं मुंतखब हो गया तो मैं वादा करता हूं हर खिलाड़ी को उसकी अलग फुटबॉल मिलाऊंगा। मुझे रब हुआ कि पूरे 22 के 22 खिलाड़ी 11 इधर के 11 उधर के एक बॉल के पीछे बेचारे भागते रहे। और फिर ये हजरात आप हजरात वाकई और खुसूसन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो तो ऐसा लगता है कि जन्नत और दोजख का फैसला होना है। पाकिस्तान जीत जाए तो सारी कौम बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएगी। और खुदा ना खास्ता हार गया तो अल्लाह माफ करे, हम सब जहन्नमी हैं। और ये खबरें भी आप हजरात पढ़ते रहते होंगे कि मैच पाकिस्तान हारा, नहीं नहीं बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पाकिस्तान ने मैच जितवाया। एक टीम गई ना, खेलने के लिए, तो जब वापस आए तो उनसे पूछा कि बताओ नतीजा क्या रहा टूर्नामेंट का। मैंने कहा दो मैच खेले। कहा क्या नतीजा निकला? कहा एक हम हार गए, दूसरा वो जीत गए। तो इसको कहते हैं आला दर्फी। मैच जितवाना भी आला दर्फी है। ताबीर का फर्क है ना, कहे हारा तौबा तौबा, नहीं भाई हारा बनाए, जितवा दिया, इसको कहते हैं आला दर्फी, तुम जीत जाओ। फिर उसके बाद जब वो मैच जीत हार गए, गुस्से में आके टीवी तोड़ दिया। इसको कहते हैं मतरू के मासियत। काश अल्लाह की रजा के लिए टीवी को तोड़ देते
सही,
तो क्या आज़र मिलता। एक साहब मेरे आने लगे, अल्लाह ताला ने अपने बुजुर्गों की बात की नकल की तौफीक दी, उनके दिल में जज्बा हुआ। उनके घर में 16 टीवी थे, रईस आदमी थे, मालदार, 16 टीवी। कहने लगे कि इन टीवी का क्या करूं, उसको बेच दूं? मैंने फतवा लिया है, बेच सकते हैं। मैंने कहा फतवा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप बेच सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा आप बेचने के बजाय तोड़ें, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र है आपके पास माल की कमी नहीं है। मेरा कोई एक गरीब आदमी होता जिस बेचारे की जरूरत होती तो मैं उसको यही कहता, लेकिन आप तोड़े और सबको इकट्ठा, खानदान वालों को, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके तोड़े, ताकि इस अच्छे काम की तशहीर हो। और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतना माल दिया है, आप तोड़ेंगे आपको कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उस तोड़ने पर जो अज्र मिलेगा आपको और आपके इस अमल की वजह से दूसरों को तरगीब होगी, देख लीजिए। एक साहब ने ऐसे ही टीवी निकाला, अजीब आदमी है, पता नहीं उसका राज पता ना चल जाए क्योंकि बयान रिकॉर्ड भी होता है। उन्होंने क्या किया, बीवी को कहा मैं बेचने जा रहा हूं, और उसको बेचने के कह के कहा कि आधे पैसे जो है वो नकद मिलेंगे, आधे जो है वो अगले महीने मिलेंगे। तो आधे पैसे बीवी के हाथ पर रखा है कि देखो ये है, और सुबह सुबह इतवार का दिन था, सुबह सुबह रिक्शे में डाल के मेरे यहां ले आए। कहने लगे टीवी लाए उसको जिबा करना है। तो हमारे यार दोस्त ने कहा कि भाई मगरो तब वो बेचारा टीवी बजवाने हाल ये शेर पड़ रहा था, पत्थरों मेरे सर पे बरसते क्यों हो, हमने तुमको भी कोई खुदा बना रखा। तो मतरू के मासियत, आइंदा मैं टीवी नहीं देखूंगा, ये पाकिस्तानी बस हारते ही हैं, ये मैच हार जाते हैं। ये तो बुजुर्गों की दुआ की बरकत है कि हम मुसलसल जीते चला जा रहा है, ऐसे ही नहीं सर, ये तो अल्लाह वालों की दुआओं की बरकत है कि मुसलसल जीते। बड़ी कौम ने बड़ी दुआएं मांगी है, काश ये दुआ इस्लाह के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो हमें जरूरत है, अमन और सुकून जिसकी हमें जरूरत है, हमारे दीनी इदारों की हिफाजत, हमारे उलमा की हिफाजत, हमारे मुसलमानों की हिफाजत, हमारे बच्चों की हिफाजत जिसकी हमें जरूरत है, अल्लाह ताला उसके लिए हम दुआ नहीं मांगते। और अपनी इस्लाह की जरूरत के बाल सफेद निकलना शुरू हो गए, लेकिन इस्लाह की तरफ गफलत का आलम यह कि इस्लाह की तरफ तवज्जो नहीं है। हमारे अंदर कितने गुनाह ऐसे हैं जिसका हमें एहसास नहीं है, जैसे बिजली है, बिजली है जल रही है कोई परवाह नहीं, क्यों फिक्स बिल आ रहा है या कुंडा लगा हुआ परवाह नहीं है। जिस दिन मीटर आया उस दिन बाप ने वो झुके वो गालियों के साथ, ये गाली भी अजीब चीज है। हमारे दीनदारों को इसकी भी बड़ी आदत है गालियां देने की। चंद चीजें दाढ़ी के साथ बड़ी अजीब लगती है, जिसमें से एक गाली दी कि दाढ़ी वाला और गाली दे, बड़ा अजीब, एक मुनासिबत नहीं लगती ना, तेरी मां तेरी बहन करे दाढ़ी के साथ अजीब लगता है। उसी तरह से दाढ़ी के साथ सिगरेट भी अजीब लगती है, कि जरा माशाल्लाह बुजुर्गों के यहां जाते हैं, खानका में जाते हैं, तबलीग में जाते हैं, मदरसे में हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत है, दाढ़ी भी है और सिगरेट बाजी नहीं छोड़ते, बड़ी अजीब लगती है। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि अच्छा मौली साहब इसलिए तो मैं दाढ़ी नहीं रखता कि सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, ऐसा भी ना कर, छोड़ने की चीज तो भाई सिगरेट है ना। मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे सिगरेट क्या है, सग, सग माने कुत्ता, और रैट, रैट माने चूहा, कुत्ता और चूहा सिगरेट का मुरक्कब है। और किसी ने कहा कि जो सिगरेट होती है उसके एक सिरे पर आग होती है और दूसरे सिरे पर अहमक होता है। और हमाकत ये ना, कोई आदमी 100 के नोट को या किसी नोट को उसको आग लगाए उसको क्या कहेंगे, अकलमंद बोलेंगे, अहमक ही कहेंगे ना। तो सिगरेट पैसों के बदले में आ गई, तो पैसे को ही तो आग लगाना है, और क्या फर्क है। रही बात ये, रही बात के साथ, असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो असल में हमने सिर्फ प्रेशर की खातिर से पीते हैं, प्रेशर लगवाना होता है, इसलिए बैतुल खला में पीते जाके ताकि ऊपर से धुएं का प्रेशर आए और प्रेशर से निकल जाए। तो मैं इसका इलाज करवाए, इसका इलाज है, हुकमा से रابطہ करे, डॉक्टरों से रابطہ करे, इसका इलाज है। लेकिन अपनी सेहत को बर्बाद करना दाढ़ी के साथ, ये चीज बड़ी अजीब लगती है। और एक और चीज जो दाढ़ी के साथ बड़ी अजीब लगती है वो है बदनजरी, यानी औरतों को देखना। कितनी अजीब बात है कि दाढ़ी है और इसकी नजरें कैसी आजाद हैं, इसको देख, उसको देख, उसको देख। महल इसी ने तो मना किया, हदीस शरीफ में मना है कि गुजरगाह पर मत बैठो, गुजरने के लिए मत बैठो, बैठो तो हक अदा करो, और उस हक में से एक हक यह भी है कि नजर की हिफाजत करो, नजर की हिफाजत करो, और तुम्हारे बैठने की वजह से किसी गुजरने वाले को अजियत और तकलीफ ना हो। गाड़ी खड़ी करना हो, मोटरसाइकिल खड़ी करना हो, या इसी किस्म की कोई बात हो जिससे किसी गुजरने वाले को अजियत हो, इसको मना किया गया, ये हक है चलने वाले का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मतरू के मासियत ये कि गुना की हिम्मत न रही, गुना की ताकत खत्म हो गई, आका जी अब तो हम बस, अब तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो अब वो बूढ़ा हुआ, दफ्तर के काम का नहीं रहा, दुकान के काम का नहीं रहा, बीवी के भी काम का नहीं रहा, बस एक ही जगह पर रह गई जहां वो मुसल्लत होता है और उसका नाम है मस्जिद। अब वो मुल्ला के सर पे चढ़ के बैठ जाता है और दखल अंदाजी करता है। जब सब जगह से रिटायर, बेचारा एक मुल्ला ही है जो उसको बर्दाश्त करता है। तो मकरूह के मासियत, अब एक सवाल है, एक है तारीख मासियत जो गुनाह को छोड़ दे, एक है मकरूह के मासियत जिसको गुनाह छोड़ दे। इज्जत तारीख मासियत की है या मकरूह के मासियत की है? तारीख मासियत की। बस मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे शेख रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं तारीख मासियत बनो, गुनाहों को छोड़ दो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी गर्दन से गुलामी का तौर निकालकर तुम्हारे सर पर अपनी दोस्त विलायत का ताज सजा देंगे। और ये वो चीज है जो नस्बत विलायत सिद्दीकियत दिलाती है, मुंतहा विलायत सिद्दीकियत, अल्लाह ताला की कुर्ब और दोस्ती का इंतहाई मकाम जो विलायत सिद्दीकियत कहलाता है वो तुम्हें मिलेगा। वो कहते गुनाह छोड़ दो, अल्लाह ताला की नाफरमानी छोड़ दो, आइनन कलबन और कालिबन, अपनी नजर, अपना दिल, अपना जिस्म गुनाह छोड़ दो, उसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें अपनी दोस्त की विलायत अता फरमा देंगे। और अल्लाह का वली क्या चीज है जिसकी बादशाह भी जूती उठाते हैं, सोचो। लेकिन जूतियां उठवाने के लिए ना बनना कि लोग मेरी इज्जत करेंगे, और कभी हयात शीरी से मिठाई आएगी, कभी असर शीरी से मिठाई आएगी, कभी कसर शीरी से मिठाई आएगी, इसकी खातिर ना करें। खाली से शीरीनी पर फिदा हो, मारूफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह ईचे शीरी नस्त नाम, अल्लाह अल्लाह ईच शीरी नस्त नाम, शीरो शक्कर भी शवद जानम तमाम। अल्लाह अल्लाह कैसा मीठा नाम है आपका, शीरी और मीठा नाम है कि जैसे किसी ने मेरी जान में दूध और शक्कर घोल दिया। सुभान अल्लाह। तो फरमाया तारीख मासिद को इज्जत है, मकरू के मासिद को इज्जत नहीं है। तारीख मासिद बनो अल्लाह अपना वली और दोस्त बना लेंगे। ये सवाल अब आखिरी बात आती है कि साहब ये हिम्मत हमारे अंदर नहीं होती। मेरे शेख रहमतुल्लाह ने समझाया, फरमाया देखो गुनाह छोड़ने की हिम्मत पहले अल्लाह ताला ने हमें दी है, फिर गुनाह छोड़ने का हुक्म दिया है। और इसकी दलील क्या? कोई आदमी कहता है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। हजरत ने एक वाकया सुनाया, फरमाया कि हजरत मौलाना शाह अब्दुल साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह भी और मेरे शेख हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों हजरत हैदराबाद में थे। हैदराबाद में के चिड़ियाघर तशरीफ ले गए शेर देखने के लिए। तो हजरत के साथ एक साहब बड़े मियां भी थे वहां आए, जो लाठी टेक कर सहारे से चल रहे थे, लाठी का सहारा भी और बच्चे का सहारा भी। और बच्चा जरा तेज चलने लगा तो बाप ने डांटा कि बेटा जरा आहिस्ता चल, मैं बूढ़ा हूं, मरीज हूं, दम्मे का मरीज हूं, तो आहिस्ता चल। डांट भी रहे थे। हर फरमाते थोड़ी देर में ऐलान हुआ कि मुलाजमीन की गफलत की वजह से शेर का पिंजरा खुला रह गया। चिड़ियाघर की इंतजामिया किसी की जिम्मेदार नहीं है, आप अपनी जान की हिफाजत खुद करें। हर फरमाते वो लोगों ने दौड़ लगाई कि चपले वपले कोई परवाह नहीं, वो भागे। फरमाया सबसे आगे वो बड़े मियां भाग रहे थे। हजरत ने फरमाया देखो क्यों, जान प्यारी है, जान बचाने की खातिर से, जान बचाने की खातिर से जान दांव पर लगा दी। फरमाया जिस दिन अल्लाह प्यारा हो जाएगा तो ईमान बचाने की खातिर से जान की बाजी लगा देगा। ये क्या कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है? वल्लाह हिम्मत है, साफ निकला। हजरत ने एक मिसाल दी, फरमाया देखो जंगल में एक सयाह गया, टूरिस्ट गया, वहां पे एक हसीन औरत मिली और वो हसीन औरत इसे बुला रही, आ जा इधर। वो इधर है, उसने सामने देखा तो उसको कुछ अंगारा के सब आग नजर आई, तो गौर से देखा तो शेर था। शेर की आग मिसल अंगारे की होती है, आग की तरह आंख उसकी। अब वो सयाह, वो सयाह ने शेर को देख लिया, अब वो औरत उसको बुला रही है कि इधर आ जा। वो सैया अपनी जगह खड़ा है, उसके भी आओ भाई, क्या तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है गुनाह करने की? आओ मेरे पास आओ। तो वो कहता है कि ताकत तो मौजूद है, ताकत है गुनाह तो है, लेकिन ताकत को इस्तेमाल करने की ताकत नहीं है। क्यों? शेर देख रहा है। फरमाया जिस दिन खालिक शेर की अजमत दिल में होगी उस दिन गुनाह की हिम्मत होगी, लेकिन हिम्मत को इस्तेमाल करने की हिम्मत ना होगी। इस नजर फरमा करते थे अल्लाह ताला के हिल्म को और बर्दाश्त को, मत रहम को के इंतहा का इंतजार न करो। इस बात को न सोचो कि अभी गुनाह कर लो बाद में तौबा कर लेंगे। फरमा अगर हमारे गुनाह की नफूसत शामत अमल की जैसे गुर्दे में पत्थरी पैदा हो गई, अल्लाह ताला का अजाब अगर आ गया, तो जिसकी खातिर से तुम गुनाह कर रहे हो, जिस नफ्स और दिल की खातिर से, जिस गुनाह महबूब को खुश करने के लिए कर रहे हो, फिर क्या करोगे? वही भागेंगे तुमसे। तो इसने फरमाया कि अल्लाह के लिए गुनाह को छोड़ दो। हिम्मत, अब रही हिम्मत में, हिम्मत नहीं है, हिम्मत की, हिम्मत के लिए अल्लाह वालों के पास आए, हिम्मत की बैटरी को चार्ज करवाए। ये मोबाइल है ना, चार्ज करवाते हैं के लिए आपके पास। पहले तो मोटी पिन पतली पिन का था, अब वो मोटी पतली पिन का चक्कर ही खत्म हो गया, अब चार्जर ही नई किस्म का आ गया, यूनिवर्सल आ गया, हर जगह फिट हो जाता है। सबसे पहले आके पूछते हैं जनाब चार्जर है आपके पास? मुलाकात सलाम करना भूल जाते हैं। चार्जर है आपके पास? क्यों? बैटरी की चार्जिंग खत्म होने की कितनी फिक्र है, अपने ईमान की चार्जिंग की कोई फिक्र नहीं है कि जी चले जाएंगे आराम से बाद में। जिनको फिक्र होती है तो हजारों हजारों मील का सफर तय करके लोग अपने बुजुर्गों के पास अपनी इस्लाह और अल्लाह ताला की मोहब्बत सीखने के लिए गए कि फरमाए हिम्मत की बैटरी को अल्लाह वालों की सोबत से चार्ज करो। चार्जिंग होगी, मजा आ जाएगा, इबादत की लज्जत भी कुछ और हो जाएगी। अल्लाह वालों की सोबत ऐसी चीज है। हमारे गुना आलू दिल की मिसाल ऐसी जैसे चाय, बिल्कुल चाय, लेकिन उसमें जैसे जैसे दूध डालते जाए वैसे वैसे उसका रंग बदलता चला जाता है, और बल्कि चाय में एक चमचा दूध डाल दें रंग बदल देता है। फरमाया देखो अल्लाह वालों की सोबत का क्या असर है कि चाय में एक चमचा दूध, वो चाय का कप कितना बड़ा है लेकिन एक चमचा दूध उसका रंग बदल देता है। फरमाया इसी तरीके से अपने गफलत ज़दा दिल को अल्लाह वालों के पास लेके जाओ, उनके नूरानी कल्ब का जब असर पड़ेगा हमारे दिल का रंग बदल जाएगा। इनकी सोबतों में रहो, अपनी बैटरी को चार्ज कराओ, लेकिन साथ में अपनी हिम्मत को भी इस्तेमाल करो। हकीम उलूमत थानी रहमतुल्लाह ने कसम खाकर फरमाया कि खुदा की कसम गुनाह को छोड़ने का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, सिर्फ ये कि तुम हिम्मत इख्तियार कर लो, हिम्मत इख्तियार कर लो, तो फरमाया कि फिर हर गुनाह छूट सकता है। अल्लाह ताला अपने करम से हम सबको तारीख मासियत बनाए और मतरू के मासियत ना, ऐसा ना हो कि अब गुनाह ने हमें छोड़ दिया, अब सब खत्म, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है मेरे दोस्तों, फिर भी अल्लाह ताला अपने करम से जिसको जिस तौफीक हो अल्लाह ताला के यहाँ क्या फरमा, या इबादिल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम, ऐ मेरे बंदो, मेरे बंदो, तुमने अपनी जान पर जुल्म किया, लेकिन ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मैं मायूस नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के सहारे पर गुनाह करना ये शराफत बंदगी नहीं है। ईमान को सख्त नुकसान पहुंचता है। अब वो क्या दुआ के लिए कहेगा, क्या दुआ करेगा कि गुनाह में मुब्तला है और कहे ईमान की हिफाजत, जो कि है सरासर ईमान को डुबोने का जरिया, ईमान को ले जाने वाली चीज। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए और तारीख़े मासियत बनाए। हजरत का कितना प्यारा मज़मून है कि एक होता है तारीख़े सल्तनत, एक होता है मतरूक़े सल्तनत। इसी से समझाया, एक है तारीख़े मासियत, एक है मतरूक़े मासियत। तारीख़े मासियत की इज्जत है, गुनाह छोड़ दो अल्लाह ताला के क़ुर्ब और ताल्लुक में अल्लाह का इंतहाई मकाम मिलेगा। और फरमाया इसकी हिम्मत के लिए किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक करो, उससे बैत हो जाओ, उसकी सोहबत में रहो, उसके पास वक्त लगाओ, यहां तक कि 40 दिन भी लगाओ, उसके साथ रहो सफर में हजर में, इंशाल्लाह वो नस्बत माल्ला और ताल्लुक माल्ला हासिल होगा, लोग हैरान हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमा दे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबी व बारिक व सल्लम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، جملہ صفات حمیدہ عطا فرما. یا اللہ اللہ والوں کے اخلاق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، ہم سب کو تارک معصیت بنا، تقوی والی زندگی عطا فرما، گناہ والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں 100% شریعت و سنت پر چلنے والا بنا دیجئے. یا اللہ شریعت و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، جو ہمارے پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، رحمت نازل فرما. یا اللہ جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو مطیع فرما بردار بنا. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما بردار بنا، اور یا اللہ جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، اچھے رشتے عطا فرما، جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد فرما، نیک صالح بیوی عطا فرما، میاں بیوی میں محبت قائم فرما، یا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما، ہمارے دلوں کو نر فرما، ہمارے دلوں کو نر فرما، ہمارے دلوں کو نر فرما، ہمارے مزاج میں رحمت کو غالب فرما، ہماری طبیعتوں میں برداشت عطا فرما، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری جان، ہمارے مال، ہماری آبرو کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، خدمت دین کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعالی ہماری شامت عمل کی نحوستوں کو ختم فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، اپنے بڑوں والی اسلاف والی زندگی عطا فرما، یا اللہ تعالی اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے اللہ ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں، پاکستان میں امن قائم فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ دشمنوں کی جو نظر ہے یا اللہ اسے حفاظت فرما، تمام یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یا اللہ پورے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ملک میں استحکام عطا فرما، معاشی استحکام عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں یہاں کی زراعت، معیشت اور تجارت میں برکت فرما، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اس مل بیٹھنے کو دینی ترقی کا ذریعہ بنا، اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا، اپنی دوستی اور محبت کا ذریعہ بنا، اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.